Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with means my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
धन्यवाद वैभव. नमस्कार, हम एक बार फिर हाजिर हैं मार्केट मंत्र के ताजा अंक के साथ, और आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं. जैसे कि आज रविवार है, और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं. नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता हमें एसटीडी कोड लगाना ना भूलें. एसटीडी कोड है 011 यानी 011. और आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए और आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
जी धन्यवाद.
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव.
Absolutely, Sparsh. The headlines first. Foreign investors pump in over 6,000 crore rupees into the Indian debt markets in August. Domestic markets to take cues from corporate earnings and domestic and global economic data in the holiday truncated next week. And global gold prices fall nearly 1% this week from record highs.
विदेशी निवेशकों ने अगस्त में किया भारतीय ऋण बाजारों में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश. कंपनियों की आय और घरेलू तथा वैश्विक आर्थिक आंकड़े कर सकते हैं इस सप्ताह घरेलू बाजारों का रुख तय. और वैश्विक सोने की कीमतें इस सप्ताह रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 1% गिरी. और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की पहली खबर पर.
एब्सोल्युटली,
विदेशी निवेशकों ने अगस्त के पहले 7 सत्रों में भारतीय ऋण बाजारों में 6,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है. हालांकि एफपीआई ने इक्विटी बाजार में 13,431 करोड़ रुपए की निकासी की. ये निकासी भारतीय पूंजी बाजार में लगातार 2 महीने के सकारात्मक निवेश के बाद की गई. एफपीआई ने जुलाई के महीने में इक्विटी में 32,365 करोड़ रुपए और जून के महीने में 26,565 करोड़ रुपए का निवेश किया था. उससे पहले एफपीआई द्वारा मई में 25,586 करोड़ और अप्रैल में 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की गई थी. इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 1.2 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया जा चुका है. इक्विटी में अब तक 22,135 करोड़ और डेट में 97,249 करोड़ रुपए का निवेश किया है.
And Sparsh, we already have our first caller from Pune. We have Mr. Hitesh. Hitesh, welcome to the show. Please ask your question.
Hi sir, good evening.
Very good evening.
मेरे को ये पूछना था कि इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, क्या हम सिर्फ इंडेक्स फंड में लगाकर ही अपना ये स्ट्रेटेजी सही रहेगी, जैसे निफ्टी 50, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250, सिर्फ ये 3 इंडेक्स फंड पर लगाएं तो ये स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी?
हितेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में आज भी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो मिड कैप में मिड कैप निफ्टी 150 है, अगर आप उसको जो एक्टिव फंड्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं, एक्टिव फंड से मेरा मतलब हुआ जहां पे फंड मैनेजर ये कॉल लेता है कि कौन सा मिड कैप इस पोर्टफोलियो में आएगा, कब नहीं आएगा, कब निकलेगा वैल्यूएशंस के हिसाब से, वो सारी कॉल्स हम पैसिव यानी कि इंडेक्स फंड्स में नहीं देखते हैं. तो हिस्टोरिकली देखा गया कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में एक्टिव फंड्स का अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग केस है. पैसिव उतना ज्यादा मुकाम अभी तक नहीं बना पाए हैं जितना वो लार्ज कैप में बना पाए हैं. जैसे आप देखते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इनके बेस्ड इन पे जो माउंटेड इंडेक्स फंड्स हैं उनका जब कंपैरिजन होता है एक्टिव लार्ज कैप फंड से, वहां पे पैसिव का केस भी काफी ज्यादा स्ट्रांगली आता है. बट ये हुई हर एक सेगमेंट में पैसिव्स का कैसा प्रदर्शन रहता है उसके हिसाब की बात. बट जहां पर एक सिंप्लिसिटी की बात आती है तो मैं बिल्कुल ये मानती हूं कि म्यूचुअल फंड्स अपने में काफी सारे फंड्स आपको ऑफर करते हैं. एक रिटेल निवेशक के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है टू फिगर आउट कि कौन सा फंड सही है, कौन सा फंड वो ले. तो फॉर सिंप्लिसिटी सेक, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी लगती है कि कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा सिलेक्ट करें, तो आप स्टार्टिंग के लिए इंडेक्स फंड बिल्कुल ले सकते हैं, बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, जब इंडेक्स फंड्स में रहते हैं थोड़ा सा मार्केट को समझिए, और फिर जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप की बात है, क्योंकि ये आपके लंबे और ज्यादा लंबे गोल्स के लिए होता है, यहां पे रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा होता है बट रिस्क भी ज्यादा रहता है, तो व्हाई नॉट गो फॉर समथिंग विच कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू विद बेटर रिटर्न्स, विच इज द एक्टिव फंड्स। तो आप स्टार्ट इंडेक्स फंड से कर सकते हैं, बट स्मॉल और मिड में एक्टिव फंड्स आप लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
जी, और हम अपने अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। कोलकाता से बसंत हमारे साथ हैं। बसंत जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग सर।
जी
सर, मेरा जो क्वेश्चन है, इफ एनी पर्सन हैव द इनकम ऑफ 4 लाख इन एनी फाइनेंशियल ईयर एंड द पर्सन हैव नो अदर इनकम सोर्स, सो व्हाट विल बी द टैक्स इन न्यू टैक्स रेजिम? थैंक यू।
अच्छा, नए टैक्स रेजिम में 4 लाख इनकम पे जाना चाहते हैं।
देखिए, तो जहां तक रेट ऑफ टैक्स की बात हो जाती है सिर्फ इनकम के बेस पर, तो ये वैसे थोड़ा सा टैक्स एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बट जितनी मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको बता देती हूं कि जो 3 लाख तक तो आपका कोई टैक्स लगता नहीं है, 3 से 7 लाख के बीच में 5% लग जाता है। ये मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकती हूं, बट मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगी कि आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लीजिएगा।
And now we have a next caller from Ghaziabad, Gaurav. Gaurav, स्वागत है आपका हमारे शो में, प्लीज अपना सवाल पूछे।
नमस्ते मैडम, मार्केट पंथ रेटिंग को नमस्ते।
जी नमस्कार।
सवाल है, एवरी इन्वेस्टर वुड लाइक टू एनहेंस हिज रिटर्न ऑन रिटेल इन्वेस्टर लाइक अस, वी वुड लाइक टू एनहांस अवर रिटर्न ऑन सीएजी बेसिस, तो वी ऑलवेज समटाइम्स कुछ फॉल होते हैं, जैसे कल फॉल होने की पूरी उम्मीद है शायद थे, तो हम ऐसे केस में कहाँ टॉप अप करें, मल्टी कैप में करें जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी है फ्लेक्सी कैप की, या फिर इंडेक्स में करें, इंडेक्स के भी कल गिरने के चांसेस हैं, तो हाउ एंड व्हाट इज इन योर ओपिनियन बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज अवर रिटर्न इन दीज केसेस, जब भी हमें फॉल मिलता है तो हम ड्रॉप इन्वेस्ट करें कहाँ, किस में करें, कौन से फंड में करें, इंडेक्स में या फिर अपने मल्टी कैप में, फ्लेक्सी कैप में? थैंक यू।
गौरव जी, मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आपने बोला था काफी ज्यादा चांसेस हैं कि कल गिरेगा, और फिर आपने आगे बोला शायद से, तो ये जो शायद है ना, ये एक्चुअली हमेशा ही रहता है, जो अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट है दिस इज ऑलवेज लिंक्ड टू वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट। सो द पॉइंट बीइंग कि अगर आप ये जो बाइंग द डिप वाली चीज का फायदा उठाने की बात करना चाह रहे हैं कि ये कैसे करे कैसे ना करे, तो हमें पता ही नहीं है कि ये डिप कब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप उस टाइम पे बाय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी में ना पड़ने से ज्यादा बेहतर होता है आप टॉप अप तब करें जब आपके पास कुछ सरप्लस भी बचा हुआ है और आपको वो कहीं खर्च भी नहीं, एकदम कहीं पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बस पड़ा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ यू नो कीपिंग इट देयर इन योर सेविंग्स अकाउंट, यू कैन एक्चुअली टॉप अप योर SIPs एंड यूज देम टू वर्क एंड अचीव योर गोल्स जिसके लिए आपने म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करा हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये जो अपना साइकोलॉजिकल एक रहता है ना कि बाइंग द डिप, उससे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो ये मैं शेयर कर रही हूं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और अकॉर्डिंगली टॉप अप कीजिएगा, क्योंकि बड़े से बड़े निवेशकों को नहीं पता होता कि कब क्या हो जाएगा मार्केट में, इसलिए आप अपने एसेट एलोकेशन पर फोकस रहिए, मार्केट के उतार चढ़ाव तो आप जब तक अपने गोल तक पहुंचेंगे वो आपको, आप देखेंगे कि आपका गोल एक्चुअली में उन उतार चढ़ाव के थ्रू ही आप वो प्रॉफिट बना पाए हैं जितना आपके गोल के लिए चाहिए था।
जी स्नेहा जी, इंडेक्स फंड के बारे में बात चल रही है और कई हमारे कॉलर्स ने पूछ भी लिया है, इंडेक्स फंड में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तकरीबन जो रिटेल फोलियोज हैं उनका नंबर तकरीबन 12 गुना से बढ़ चुका है, और जो इंडेक्स फंड का जो AUM है वो तकरीबन 25 गुना से बढ़ा है, मतलब मार्च 2020 में वो 8000 करोड़ का था और तकरीबन इस साल मार्च तक वो 2 लाख करोड़ से ऊपर का है, तो क्या हम ये माने कि अब एक आम निवेशक जो है ज्यादा सेफ्टी मार्जिन देख रहा है कि इंडेक्स फंड्स की तरफ वो इन्वेस्ट करने का देख रहा है रादर देन गोइंग इन डायरेक्टली टू द इक्विटी?
मेरा मानना यहां पर यह है स्पर्श कि हमें वहां पर ग्रोथ इसलिए दिख रही है AUM में क्योंकि एक्चुअली AMCs वहीं पे फंड्स ला रही हैं, और ये जो न्यू फंड्स का एक क्रेज हो जाता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स में आज के टाइम पे डेफिनेटली चल रहा है, जितने भी सेक्टर फंड्स आ रहे हैं वो सारे इंडेक्स बेस्ड आ रहे हैं, बहुत कम है जो एक्टिव फंड्स ला रही हैं AMCs, और ये सिंपली इस वजह से है क्योंकि जब सेबी ने रीक्लासिफिकेशन एक्सरसाइज करी थी सब कैटेगरीज में बता दिया था कि हर कैटेगरी में एक ही फंड रहेगा, तो जो जहां एक लूप होल रह गया था वो पैसिव फंड्स और सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स हैं, वहीं पे हमें ग्रोथ दिख रही है इन टर्म्स ऑफ न्यू फंड्स कमिंग इन, और इसलिए हमें वहीं पर ज्यादा ग्रोथ दिख रही है कि पैसे भी वहीं पर आ रहे हैं। इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि लार्ज कैप फंड्स जो हैं वो पैसिव डोमेन में सबसे ज्यादा मतलब जहां पे सबसे ज्यादा मनी इन्वेस्टेड है वो है। वो इस वजह से भी है क्योंकि काफी टाइम से ईपीएफओ का पैसा भी अब हमारे एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ है वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो उस वजह से भी जो आपको कंटिन्यूस ग्रोथ दे रही है इट इज ऑल्सो ड्रिवन बाय दैट।
जी, और हमारे साथ फरीदाबाद से कॉलर जुड़ चुके हैं पीके बैनर्जी, स्वागत है आपका शो में, प्लीज सवाल पूछिए।
नमस्कार जी।
जी नमस्कार।
हाँ, सीनियर सिटीजन हैं हम और हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है कि म्यूचुअल फंड की तो हमें नॉलेज नहीं है, अभी हमारी एक जी मैच्योर हो चुकी है और हमने इसको ब्रेक करके सीनियर सिटीजन के रेट पे हम एफडी तैयार कर ली है, क्या हम अपने बैंक में ही एफडी में बने रहे या म्यूचुअल फंड में जाने की कोशिश करें, म्यूचुअल फंड की जानकारी कहाँ से मिलेगी, ये म्यूचुअल फंड का मैनेजर कौन होता है और क्या ये प्राइवेट बैंक के अंदर हम विश्वास करें, और क्या हम गोल्ड खरीद सकते हैं, इसमें बेनिफिट रहेगा, कृपया मार्गदर्शन करें।
तो दो तीन बातें आपने हाईलाइट करी, एक बात जिसपे मैं ज्यादा गौर करना चाहूंगी वो ये है कि आपकी एफडी मैच्योर हो रही है और आप सोच रहे हैं कि वो पैसा आप कहां पे इन्वेस्ट करें, तो दो चीजें हैं कि एक तो आपको इस पैसे से अगर इनकम जनरेट करनी है तो फिर तो मैं आपको अलग टाइप का बताना चाहूंगी कि आप अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। जहां तक बात है कि म्यूचुअल फंड्स को गवर्न कौन करता है, तो उनकी रेगुलेटरी बॉडी सेबी रहती है और उनके अंडर काफी सारी एएमसीज होती हैं और उन सबके काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। अब जहां तक बात है कि इनकी नॉलेज कहां से मिलेगी, तो आज के टाइम पे काफी ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं, आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन का भी यूज कर सकते हैं वेबसाइट, जहां पे आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी कि वो आपको ये भी बता पाएंगे कि फंड्स का फंड लेवल पे भी आपको डेटा मिल पाएगा और एडवाइस के तौर पे भी आप समझ पाएंगे कि कौन सा फंड आपके लिए सही है। बट क्योंकि आपने मेंशन करा यहां पर कि आप बैंक के थ्रू करें या अपने थ्रू करें, मतलब अपने आप करें, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर तो आपको हैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड है और आपको इतना नहीं पता है कि कहां पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से टाइप का फंड का चुनाव करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपने बैंक में बात कर सकते हैं और वो आपको नेविगेट करा सकते हैं वाया द म्यूचुअल फंड रूट। अगर आपको इसमें से मैं आपको बस इतना बता पाऊंगी, आप बैंक का ही सहारा लीजिएगा, बट आप ये जरूर देख सकते हैं कि वो आपका पैसा कहां पे लगवा रहे हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड अरेना में आप रेगुलर इनकम डिराइव करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर रखना चाहिए, बाकी सारा आप डेट में ही रख सकते हैं और वो वाला डेट एक्सपोजर आपके एफडी से जो आपका पैसा आ रहा है वो वहां पे भी चला जाएगा और 33% या 30% के अराउंड आप इक्विटी में रख सकते हैं। अब अलग अलग फंड्स में ना करके आप एक्चुअली ये कर सकते हैं कि आप अग्रेसिव हाइब्रिड या फिर इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी को ले सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड में थोड़ा ज्यादा इक्विटी रह जाता है, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आप कहां पे इन्वेस्ट करें। बट ये मैं कैटेगरी आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दे पाएं कि बैंक आपके जहां पे पैसे लगा रहा है वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि उनको कमीशन ज्यादा कहां से मिल रहा है, वो ये भी देख रहे हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। यानी जहां तक आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी अभी आप म्यूचुअल फंड से ही रूबरू होना चाह रहे हैं तो आप इन्हीं जो इक्विटी और डेट एसेट क्लास हैं इन पे ही अभी फोकस करिए। गोल्ड हमारा मानना ये रहता है कि लॉन्ग टर्म में इसका उतना कोई फायदा नहीं हो जाता है पोर्टफोलियो में जितना इक्विटी जैसी एसेट क्लास का रहता है। फिर भी अगर क्योंकि गोल्ड से हम इंडियंस एक जो स्टोर ऑफ वैल्यू या सेफ्टी की बात होती है उसको लिंक करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप 15% या 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो उसमें रख सकते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि आपको अभी स्टार्टिंग के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पे ही फोकस करिए।
Sneha, you had just mentioned about a few classes of mutual funds which were the equity based or the hybrid or the aggressive hybrid. Could you just elaborate a little more on that as to which are the mutual funds wherein senior citizens, especially ones who are retiring every year, because Market Mantra is also a show about investor awareness. And there are many people who call in and they want to know where should they put their retirement corpus into. And they also wish to know about the balance in which they should keep their money, be it in the fixed deposits or the government securities, which are absolutely safe, or take a little bit of risk and then put their money into mutual funds or anywhere. Could you please elaborate a little on that?
Right. So regarding the mutual fund arena that we were just talking about, before actually coming to the mutual fund arena, I would actually like to mention three, four things that a retiree should actually keep in mind. Those would be that when you are not getting your regular salary, there is a fear of, you know, still having some exposure to a riskier asset class like equity. But actually, the perspective that I would like to share is that equity is the only asset class that will actually help you navigate through those golden years really well, because that is the asset class which actually helps deliver inflation beating returns, because year on year we see prices of everything rising, specifically talking about, let's say, medical expenses, which comes closer to the need of a retiree during that time. So to, you know, navigate these kind of instances, having at least a third bit of equity in your portfolio does hold merit, and you can actually increase this amount as per your comfort with the market, as well as your corpus amount. That was one. Secondly, you can actually keep some portion readily available for you, because let's say you can keep first years of the income that you need in the first year post your retiring in, let's say, liquid funds, where liquidity comes a tad easier than equity. It is maybe under a day or something. And for the rest of the bit, you can keep in relatively stable and less volatile debt funds. And among the debt funds, since we have many there, you can actually go for short duration funds. So this is kind of a mix that you can go for. You just have to ensure that this asset allocation of 70-30, the one which I'm talking about, is actually rebalanced every year, because with the kind of run-up we are seeing, there's a tendency that your, you know, let's say your equity rises from 30-50, and if that makes you uncomfortable, it's time for you to rebalance. But that is something that cannot really be done every month, every day. So at least let's say at an annual frequency, if that can be done, it would be really helpful.
Ji, aur Noida se hamare saath Suresh ji jud chuke hain. Suresh ji, swagat hai aapka show mein. Please sawal puchhiye.
Okay. Market Mantra team aur Neha ji ko mera namaskar.
Ji, namaskar.
ये मेरा प्रश्न है कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूं और मैंने अपना रिटायरमेंट फंड इक्विटी लगभग 70-80% इक्विटी में और 20% हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड में इन्वेस्ट किया हुआ है. तो अभी मुझे तीन से चार महीने के बाद कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है. तो मेरे आपसे प्रश्न है कि मैं अभी, क्योंकि मार्केट हाई पर है, तो क्या उसको अभी से निकालकर डेट फंड में शिफ्ट कर दूं और उसके बाद जब मुझे जरूरत पड़े वहां से निकालूं, और उसमें अभी इक्विटी और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में कंटिन्यू रहूं जब मुझे जरूरत हो तभी निकालूं?
एक्चुअली मैं आपको यहां पे ये मेंशन करना चाहूंगी कि 3 months सर काफी कम टाइम है, एंड अगर इस मनी की रिक्वायरमेंट आपको इतने कम समय में है तो मैं आपको बोलना चाहूंगी आप बिल्कुल एकदम ही मार्केट से निकाल लीजिए. क्योंकि इट इज वेरी सिंपल, हम इन्वेस्ट करते हैं कि जब हमें पैसे की जरूरत है तब वो अवेलेबल हो, और हमें 3 months में अगर जरूरत है तो इट इज नॉट प्रूडेंट एक्चुअली टू स्टे इन द मार्केट राइट नाउ. सो आप ये वाला पैसा अभी निकाल लीजिए.
जी, और हमारे साथ बेंगलुरु से श्रीकांत जुड़े हैं. श्रीकांत जी, स्वागत है आपका शो में. अपनी सवाल पूछिए.
नमस्कार जी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार. मेरा सवाल थोड़ा लंबा है, अगर कहीं भी गलती हो तो क्षमा करिएगा. पैसा वैसा है कि सुना है पिछले एक साल के अंदर बैंक के डिपॉजिट 55% कम हो गए, और पिछले एक साल के अंदर शेयर मार्केट जो है 30% ज्यादा हो गया. नेचुरली बैंक से पैसा निकल के शेयर मार्केट में चला गया. सरकार की बहुत सारी लोन की स्कीम्स है, अगर वो फुलफिल नहीं हुई तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड को फोर्स किया जाए कि आप लिक्विडेट करिए, नहीं तो हमारी स्कीम नहीं होगी. उसी तरह जिस तरह बारिश बहुत आती है, पानी भर जाता है, फिर भी डैम से पानी छोड़ना पड़ता है, इसका जवाब दे। धन्यवाद
श्रीकांत जी, आपका सवाल अगर आप एक बार दोहरा पाएं, कुछ टेक्निकल वजह से हमें कुछ समझ नहीं आया है, आप एक बार दोबारा कॉल करें प्लीज, ताकि हम सवाल फिर से ले पाएं आपका। मूविंग ओवर टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, आफ्टर डिसअपॉइंटिंग लास्ट वीक मार्केट्स विल लुक फॉर क्यूज फ्रॉम कॉर्पोरेट अर्निंग रिजल्ट्स इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा इन द हॉलीडे ट्रंकेटेड वीक। The benchmark indices declined last week due to recession fears after disappointing US economic data, unwinding of the yen carry trade. Over 1900 companies will announce their quarterly earnings, including Nifty 50, Hero Motor Corp, Vodafone Idea, GMR Airports, Godrej Industries, IRCTC and Hindalco Industries next week. Among key economic data on the domestic front, market participants will also focus on the CPI and WPI inflation data. In addition, the market will also focus on the industrial and manufacturing numbers for June. On the global front, all eyes will be on the US inflation data for July. Furthermore, market participants will also keep an eye on GDP numbers from Europe, Japan, and retail sales and industrial production numbers from China. And we have our next caller from Delhi, Sri Hemant. Hemant, welcome to the show. Please ask your question.
Hello, namaste.
Ji, namaskar.
Mera question hai ki mutual funds mein kya criteria hai aapko invest karne ka, yani apni money ko place karne ka, aur kaun se funds aane wale dinon mein zyada acha perform karenge आफ्टर बजट, जिस तरीके से जो भी रिसेंट बजट आया है, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उनको चुनने का। सो दिस इज माय क्वेश्चन
जी।
हेमंत, व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग म्यूचुअल फंड्स, दैट शुड एक्चुअली बी ड्रिवन बाय द फैक्ट दैट फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सो लेट्स से फॉर इफ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, विच वुड आइडियली बी 5 years और मोर, द एसेट क्लास ऑफ इक्विटी वुड बी सूटेबल फॉर यू, simply because they are quite volatile when it comes to short term, and that volatility actually averages out over a longer period of time of, let's say, 5 years. And within that equity asset class, one can, for simplicity, one can actually start with index funds, but ideally it would be nice to start with active funds to get exposure to that. And one can actually, if you are a new investor, you can start with a category like aggressive hybrid, where there's a mix of equity and debt, which since it is equity oriented, a 5 years or a more horizon is suitable there. Then you can also consider diversified flexi cap funds or multi cap funds for your portfolio. Now when it comes to for your goals of lesser than 5 years, those can actually be divided into debt funds. For relatively shorter goals, let's say of about a year, a debt fund category, liquid fund would be suitable. Then what can also be looked at between, for time horizons, for goals you wanting to achieve up to 3 years, but greater than 1 year can actually be, you can actually look at short duration debt funds. So those funds can be looked at, and this is how you can actually pick funds. Regarding the fact that which mutual fund will do well in the coming times, like we were discussing at the start of this interaction, one doesn't really know which fund will do well, which sector will do well, and that is why, like I mentioned, you can go for diversified flexi-cap funds, which actually provide you with exposure to across sectors. And the fund manager takes the call as to which particular sector may do well and accordingly adjust the allocations, yet it will be diversified across sectors, so you are not really dependent on just one particular sector.
जी स्नेहा जी, आजकल एक तबका ऐसा है निवेशकों का, स्पेशली सैलरी क्लास में अगर हम बात करें, तो वो अर्ली रिटायरमेंट को सोचता है, और स्पेशली अगर 30-35 साल के युवक की बात करते हैं हम, तो उसमें उसको क्या चुनना चाहिए? अगर 60 साल ना देख करके वो चाह रहा है कि मैं 50 पे रिटायर हो जाऊं, तो क्या वो इक्विटी बेस्ड फंड्स पे जाए या डेट बेस्ड फंड पे जाए, और किस में कम रिस्क रहेगा, मतलब वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे कौन सा सही म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए और किस तरीके से एलोकेशन करना चाहिए?
राइट, सो यहां पर जो वो करना चाह रहा होगा, वो चाह रहे होंगे कि वो अपनी जो वेल्थ अक्यूमुलेशन है उसकी स्पीड को बढ़ाना चाह रहे होंगे, अगर हम बोलें तो इसके लिए इक्विटी एसेट क्लास तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है, क्योंकि आप अगर आज के टाइम पे एम कर रहे हैं कि आप जल्दी रिटायर होके अपना पैसा उतना ग्रो कर लीजिए, तो कम से कम आप 7 या 10 साल के लिए तो इन्वेस्ट करेंगे ही, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। एक और फैक्टर यहां पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा एक गोल अचीव करना चाह रहे हैं कि आप जल्दी रिटायर कर पाएं, जल्दी वेल्थ अक्यूमुलेट ज्यादा कर पाएं, तो आप एम कर सकते हैं कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसका अमाउंट आप हर अपने सैलरी इंक्रीमेंट के साथ बढ़ाए जा रहे हैं। इन दोनों चीजों पे फोकस रहना चाहिए। और जो मिड और स्मॉल कैप वाले फंड्स होते हैं वो जहां पर रिस्क भी ज्यादा रहता है वहां पे उनका रिटर्न पोटेंशियल काफी ज्यादा रहता है, हिस्टोरिकली भी ये देखा गया है, तो उनका एक्सपोजर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि ये एक सप्लीमेंट्री एलोकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो का, जो कि 20 से 25% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रिस्क भी फिर एक फैक्टर यहां प्ले करता है।
And which funds, again, Sneha, I would ask, which funds, if you could name, let's say, 3 or 4 funds in both the categories, which is the aggressive category as well as the equity category in which people can invest, regarding and keeping into the mind that, one, there is a class of investors which need quick returns but higher returns, and there is another class of investors for both aggressive as well as equity-based funds, which are there for the longer run in the market.
Right. So I would actually like to mention here that there are no quick gains when you are invested in the market.
Absolutely.
Higher return potential is definitely there and everybody should aim for that. So for higher return potential, small and mid cap funds should be looked at. And within that segment, if let's say I have to mention 1 or 2 funds, within the small cap bit, one can actually look at Nippon India Small Cap Fund, then one can also look at SBI Small Cap Fund. In the mid cap domain, one can look at the Kotak Mid Cap Fund offering, which is the Kotak Emerging Equity Fund, Axis Mid Cap Fund. These funds are relatively, they have built a consistent performance track record and can help you generate those higher returns. When it comes to the diversified flexi cap funds, one can actually look at Parag Parikh Flexi Cap or Mirai Asset Large and Mid Cap Fund.
Jee. और साप्ताहिक सोने का हाल भी हम वैभव से जान लेते हैं।
एब्सोल्युटली स्पर्श, द ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस फेल फ्रॉम द रिकॉर्ड हाईज दिस वीक ऑन डिप इन यूएस ट्रेजरी यील्ड्स एज इन्वेस्टर्स ग्रू कॉन्फिडेंट दैट द फेडरल रिजर्व विल लोअर इंटरेस्ट रेट्स इन सितंबर। गोल्ड प्राइसेस डिक्लाइन नियरली 1% दिस वीक टू क्लोज द वीक एट $2,473 पर आउंस, कमिंग ऑफ नियर रिकॉर्ड हाई लेवल्स हिट लास्ट वीक एज फेयर्स ऑफ अ रिसेशन रैम्प्ड अप सेफ हेवन डिमांड फॉर द येलो मेटल। Prices fell as much as 3% on Monday after investors liquidated positions in tandem with a broader equity sell-off. The dollar was down 0.1% against its rivals, making gold more attractive for other currency holders, while the benchmark of a 10-year note yields slipped. Silver prices also registered weekly losses to close down at $27.59 per ounce.
जी, और स्नेहा, अगर संक्षिप्त में आपसे जानना चाहें कि क्या सही म्यूचुअल फंड को चुनने का तरीका होना चाहिए, तो 5 सेकंड में अगर आप
जस्ट योर पार्टिंग थॉट्स।
राइट, सो मैं वही मेंशन करना चाहूंगी दैट आप 2-3 चीजें देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से ड्राइव ना होइए, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखना काफी इम्पोर्टेंट रहता है।
थैंक यू स्नेहा जी, आप हमारे शो में आए और आपने श्रोताओं के सवालों को जवाब दिया, धन्यवाद उसके लिए। और अंत में हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
एब्सोल्युटली स्पेश, बिफोर वी क्लोज, रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन ओवर 6,000 करोड़ रुपीज इन टू द इंडियन डेट मार्केट्स इन ऑगस्ट, डोमेस्टिक मार्केट्स टू टेक यूज फ्रॉम corporate earnings and domestic and global economic data and the holiday truncated next week, and global gold prices fall nearly 1% this week from record highs. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.